मुलाजमत के बारे में 15 सवाल जवाब। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबियीन अम्मा बाद फऔज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुलाजमत के बारे में 15 सवाल जवाब। शेख तरीकत अमीर अहले सुन्नत बानी दावत इस्लामी हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इलियास अत्तार कादरी रज़वी दामत बरकातुहुमुल आलिया के मलफूजात का तहरीरी गुलदस्ता बनाम। मुलाजमत के बारे में 15 सवाल जवाब। ये रिसाला अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुमुल आलिया से किए गए सवालात और उनके जवाबात पर मुश्तबिल है। दुआए खलीफाए अत्तार या रब्बल मुस्तफ़ा, जो कोई 14 सफहात का रिसाला मुलाजमत के बारे में 15 सवाल जवाब पढ़ या सुन ले, उसे रिस्के हलाल कमाने की तौफीक अता फरमा और उसकी वालिदैन समेत बेहिसाब मगफिरत फरमा। आमीन बिजाहि खातमिन नबियीन सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम। दुरूद पाक ना पढ़ने का वबाल। मुसलमानों की प्यारी प्यारी अम्मी जान हजरत बीबी आयशा सिद्दीका रदी अल्लाहु अन्हा सहरी के वक्त गुस्सी रही थी कि अचानक सुई गिर गई और चराग भी बुझ गया। इतने में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए। चेहरे अनवर की रोशनी से सारा घर रोशन हो गया, यहां तक के सुई मिल गई। उम्मुल मोमिनीन रदी अल्लाहु अन्हा ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका चेहरे अनवर कितना रोशन है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उस शख्स के लिए हलाकत है जो मुझे कयामत के दिन ना देख सकेगा। अर्ज की, वो कौन है जो आपको ना देख सकेगा? फरमाया, वो बखील यानी कंजूस है। पूछा, बखील कौन? इरशाद फरमाया, जिसने मेरा नाम सुना और मुझ पर दुरूद पाक ना पढ़ा। सूजने गुमशुदा मिलती है तबस्सुम से तेरे, शाम को सुबह बनाता है उजाला तेरा। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। सवाल, एक शख्स गवर्नमेंट मुलाजिम है मगर ड्यूटी पर नहीं जाता और हर महीने पहली को तनख्वाह ले लेता है, क्या उसका ये तरीका दुरुस्त है? और वो सदका और खैरात भी करता रहता है, क्या उसका खैरात करना जायज है? जवाब, अगर वो ड्यूटी नहीं देता और धोखे से तनख्वाह बटोर लेता है तो ये पूरी की पूरी तनख्वाह हराम है। इसके जरिए जकात खैरात भी नहीं कर सकता क्योंकि ये इसके पैसे हैं ही नहीं, ना ये इनका मालिक है। अगरचे इन पे कब्जा इसी का हो, इस पर फर्ज है कि जहां से ये रकम बटोरी यानी ली है वहां वापस करे और साथ साथ तौबा भी करे। सवाल, नाबालिग से पानी भरवाना कैसा है, क्या उस्ताद उससे पानी भरवा सकता है? जवाब, वालिदैन या सेठ जिसका ये मुलाजिम है, इसके सिवा किसी के लिए नाबालिग से पानी भरवाना जायज नहीं। और नाबालिग का भरा हुआ पानी जो कि शरअन उसकी मिल्क हो जाए, किसी और के लिए इसको इस्तेमाल में लाना जायज नहीं। सेठ भी सिर्फ इजारे के औकात ही में भरवा सकता है। उस्ताद के लिए भी यही हुक्म है कि नाबालिग शागिर्द से पानी नहीं भरवा सकता, नीज उसके भरे हुए को काम में भी नहीं ला सकता। हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अमजद अली आजमी रहमतुल्लाही अलैह फरमाते हैं, नाबालिग का भरा हुआ पानी के शरण उसकी मिल्क हो जाए, उसे पीना या वुजू या गुस्ल या किसी काम में लाना, उसके माँ बाप या जिसका वो नौकर है उसके सिवा किसी को जायज नहीं। अगरचे वो यानी नाबालिग इजाजत भी दे, अगर वुजू कर लिया तो वुजू हो जाएगा और गुनाहगार होगा। यहां से मुअल्लिमीन यानी असातिज़ा को सबक लेना चाहिए कि अक्सर वो नाबालिग बच्चों से पानी भरवाकर अपने काम में लाया करते हैं। सवाल, क्या ये एहतियात करनी चाहिए कि जब सेठ अपने मुलाजिम को अच्छा सा निवाला दे तो फिर उसके बाद कोई बड़ा काम ना ले, वरना उसे यूं लगेगा कि कोई काम करवाना था तब ही मुझे ये निवाला खिलाया है, वरना रोज तो नहीं खिलाता। जवाब, सेठ एक निवाला खिलाए या पूरी थाली या कुछ भी ना खिलाए, मगर वो इतना कर सकता है कि इजारे यानी नौकरी में और उर्फ से हटकर नौकर से काम ना ले। उर्फ के अंदर रहते हुए बड़ा काम हो या छोटा, वो तो सेठ लेगा क्योंकि वो इसी के पैसे दे रहा है। निवाला ना भी खिलाए, जब भी वो काम तो लेगा। सवाल, मुलाजिम के ताल्लुक से दिल में तकब्बुर ना आए, इसका हल इरशाद फरमा दीजिए। जवाब, सेठ मुलाजिम पर शफकत करे, उस पर सखावत करे, जैसे उम्दा कपड़े खुद लिए एक जोड़ा उसको भी सिलवा दे, इसी तरह ईद के मौके पर थोड़ा दिल खोल कर दे, अगर कभी अच्छी गिजा पकाई तो उसे भी पेश कर दे, जिस फल का सीजन आया मसलन आम है तो उसकी पेटी दे दे, बकर ईद आई तो खुद कुर्बानी करता है तो एक बकरा कटाई की कीमत के साथ मुलाजिम को दे दे ताकि उसके बच्चे भी खुश हो जाएं, बकरे का उसको मालिक कर दे या ये कह दे कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से तुम कुर्बानी कर देना। इस तरह शफकत देंगे तो इंशाअल्लाह मुलाजिम के ताल्लुक से तकब्बुर करीब नहीं आएगा। अपनी औलाद के साथ बंदा इस तरह की शफकत करता ही है तो अपने मुलाजिम के साथ भी करनी चाहिए। नौकर बेचारा ऐसी खिदमत कर रहा होता है कि औलाद भी ऐसी खिदमत बसा औकात नहीं करती। ये बात तस्लीम है कि मुलाजिम पैसे लेकर खिदमत करता है लेकिन औलाद को भी तो बंदा पैसे देता है, फिर ये क्या बात है कि मुलाजिम को हकीर समझते हैं और औलाद को आंखों पर बिठाते हैं। ठीक है, औलाद को भी प्यार दें, सिले रहमी उनका भी हक है, लेकिन मुलाजमीन के साथ भी अच्छा रवैया अपनाएं। अल्लाह पाक ने आपको साहिब हैसियत यानी मालदार बनाया है, जब भी आपने 10 मुलाजिम रखे हैं तो खुद को उनकी जगह रख कर सोचें कि अगर आप मुलाजिम होते तो अपने साथ किस किस्म का रवैया पसंद करते। जब आप मुलाजमीन का ख्याल रखेंगे तो ये इंशाअल्लाह टूट कर आपकी खिदमत करेंगे और ऐसी वफादारी का इजहार करेंगे कि शायद औलाद भी ऐसा ना करे, आपके लिए जान तक कुर्बान कर देंगे। बिलफर्ज अगर कोई मुलाजिम बेवफा भी निकला तो औलाद भी बेवफा निकलती है और अपने वालिदैन को ओल्ड हाउस छोड़ आती है, पैसे लेकर भाग जाती है या वालिद के नाम पर कर्जे लेकर भाग जाती है। औलाद भी तो इस्लामी तरबियत ना होने की वजह से ऐसा बहुत कुछ कर रही होती है। इस्लामी घरानों में ऐसे वाकयात सुनने को नहीं मिलते, लेकिन मॉडर्न और सिर्फ दुनियावी तालीम देने वाले मालदारों के यहाँ इस तरह के वाकयात ज्यादा होते हैं, गरीबों और मजहबी घरानों में निस्बतन ऐसा कम होता है। सवाल, मैं एक इदारे में काम करता हूं जहां सेठ की तरफ से मुझ समेत किसी भी मुलाजिम को मस्जिद में बाजमात नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं है, ऐसी सूरत हाल में जमात छोड़ने का गुनाह किसके जिम्मे है? जवाब, जहां मस्जिद मौजूद हो और जमात से नमाज पढ़ने में कोई शरई उजर भी ना हो तो वहां बाजमात नमाज अदा करना वाजिब है। अब अगर कोई सेठ अपने मुलाजमीन को बाजमात नमाज पढ़ने से रोकेगा तो वो और जमात छोड़ने वाले मुलाजमीन सब ही गुनाहगार होंगे और ऐसी मुलाजमत करना भी जायज ना होगा। बाज़ मकामात ऐसे होते हैं कि जहां मीलों मील तक मसाजिद ही नहीं होती तो ऐसी जगहों पर जमात वाजिब नहीं होती। अलबत्ता इसी सूरत में अगर सेठ नमाज पढ़ने से भी रोकता हो जिसके बाइस मुलाजमीन नमाज ना पढ़ते हो तो ऐसी नौकरी ही जायज नहीं। सवाल, ऑफिस की चीजें मसलन प्रिंटर और फोटोकॉपी मशीन वगैरह अगर कोई मुलाजिम अपने जाती इस्तेमाल में लाना चाहे तो किससे इजाजत लेना जरूरी होगी? जवाब, अगर वफ की चीजें हैं तब तो किसी से इजाजत लेना काफी ना होगा, और अगर प्राइवेट हैं तो असल मालिक या जिससे उसने अपना नुमाइंदा बनाया हो और इख्तियार दिया हो उसकी इजाजत से इस्तेमाल कर सकते हैं। बाद अवकात असल मालिक की तरफ से मैनेजर और इस तरह के बड़े ओहदेदारान को छोटी मोटी चीजों के इख्तियार दिए जाते होंगे, लिहाजा अगर उन्हें इख्तियार दिए हुए हैं तो उनसे इजाजत लेकर इस्तेमाल कर सकेंगे, वरना इस्तेमाल नहीं कर सकते। सवाल, आजकल ज्यादातर मुलाजमीन के साथ अच्छा सलूक नहीं किया जाता, सेठ किसी मामले में उनके साथ तआवुन नहीं करते, और अगर मुलाजिम को कोई मसला हो तो उसे हल नहीं करते, यूं मुलाजमीन बड़ी मुश्किल में होते हैं। मुलाजमीन के हुकूक के हवाले से कुछ रहनुमाई फरमा दीजिए। जवाब, मुलाजमीन के भी हुकूक हैं और सेठ के भी हुकूक हैं। बाज़ औक़ात सेठ मुलाजमीन पर जुल्म कर रहा होता है, और अगर मुलाजिम ऐसा है कि जिसकी सेठ को मोहताजी है, ऐसा कि बाद मुलाजमीन ऐसे पावरफुल होते हैं कि कारोबार संभाले होते हैं और उन्हें सारे रास्ते पता होते हैं, तो यूं वो बड़े कीमती होते हैं और सेठ को चला रहे होते हैं, तो ऐसे मुलाजमीन बाज़ औक़ात सेठ को खिलौना बनाए हुए होते हैं। लिहाजा दोनों तरफ से जो भी जुल्म करेगा वो गुनाहगार होगा। ज्यादातर सेठों की शिकायत की जाती है कि ये लोग जुल्म करते हैं, लेकिन हर सेठ ऐसा नहीं होता, बल्कि बाज़ सेठ ऐसे भी होते हैं जो मुलाजमीन को औलाद की तरह रखते हैं और उनके साथ हुस्ने सलूक से पेश आते हैं। मुलाजिम को भी चाहिए कि सेठ के साथ अच्छा सलूक करे, वक्त पर उसे काम करके दे और उसके माल आल औलाद और घर में खयानत ना करे। अगर मुलाजिम का किरदार सुथरा होगा तो सेठ अखलाकी तौर पर खुद ब खुद उसके साथ अच्छा रवैया इख्तियार करने पर मजबूर हो जाएगा। आम तौर पर ताली दोनों हाथों से बज रही होती है, ताहम सेठ को चाहिए वो मुलाजिम का ख्याल रखे, उसे वक्त पर तनख्वाह दे और तनख्वाह के लिए धक्के ना खिलाए, मसलन परसों दूंगा या तरसों दूंगा करके बेचारे को तंग ना करे। जिस तरह हमारे यहाँ पहली तारीख को तनख्वाह देने का उर्फ है, तो पहली तारीख को तनख्वाह दे दे। याद रहे, जो कम तनख्वाह वाले मुलाजमीन होते हैं महीने के आखिरी तारीखों में उनकी तनख्वाह खत्म हो जाती है और उन पर कर्जे चढ़े होते हैं, लिहाजा अगर सेठ एहसान करना चाहें तो पहली तारीख से दो दिन पहले इन्हें तनख्वाह दे दें ताकि बेचारे अपने कर्जे वगैरह उतार सकें। लेकिन ऐसा करना सेठों के लिए लाजिम नहीं है। इसी तरह सेठों को चाहिए कि ईद और शादी ब्याह के मौके पर मुलाजमीन को तहाइफ दें ताकि इनका दिल खुश हो। ये देना अगरचे फर्ज नहीं कि अगर नहीं देंगे तो गुनाहगार होंगे, लेकिन फिर भी देते रहें। यूं ही सेठ के घर में कोई अच्छी चीज पके तो वो मुलाजिम को भी खिलाए, कि इस तरह करने से मुलाजिम खुद ब खुद वफादारी करेगा और सेठ की मोहब्बत उसके दिल में घर कर जाएगी। अगर सेठ और मुलाजमीन एक दूसरे के साथ हुस्ने सलूक करेंगे तो इंशाअल्लाह हमारा मुआशरा सही हो जाएगा और इससे जुल्म का कला कमा यानी खात्मा होगा। सवाल, मैं प्रेस का काम करता हूं और हमारे पास अमूमन प्रिंटिंग एजेंसियों वाले अपनी प्लेटें छोड़ जाते हैं और हमने ये लिख कर लगाया हुआ है कि 15 दिन के बाद हम जिम्मेदार नहीं होंगे। इसके बावजूद हम अखलाकी तौर पर महीने दो महीने तक प्लेटें संभाल कर रखते हैं और उसके बाद हम उन प्लेटों को जाया कर देते हैं या बेच देते हैं। ये इरशाद फरमाइए कि हमारा उन प्लेटों को बेचना कैसा है और प्लेटें बिक जाने के बाद प्लेटों का तकाजा करना कैसा है। जवाब, आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि प्लेटें वापस लेने और देने का उर्फ है। ऐसी सूरत में आपका ये कह देना कि 15 दिन के बाद हम जिम्मेदार नहीं हैं ये शर्त शरअन गलत है। जिसकी प्लेटें हैं उसे वापस करनी ही होंगी, चाहे वो 15 दिन बाद आए, महीने बाद आए या 100 साल बाद आए, क्योंकि मालिक अपनी चीज के मुतालबे का हक रखता है और अपनी चीज मांग सकता है। इसका हल ये है कि जिनकी प्लेटें हों उन्हें फोन कर दिया जाए कि आपकी प्लेटें रखी हैं, ले जाइए, या अगर करीबी जगह है तो किसी मुलाजिम के जरिए प्लेटें वहां पहुंचा दें, क्योंकि आपके लिए ये प्लेटें रख लेना और इस्तेमाल में ले आना जायज नहीं है। अलबत्त अगर प्लेटों का मालिक कहता है कि मुझे प्लेटें नहीं चाहिए, तुम ले लो, तो फिर आपका लेना जायज हो जाएगा। सवाल, तिजारत करने वाले बाज लोगों को अगर ये कहा जाए कि आप अपने कारोबार के बारे में शरई रहनुमाई ले लीजिए या दारुल इफ्ता चले जाइए, तो वो कहते हैं कि ना हम झूठ बोलते हैं और ना ही किसी का पैसा खाते हैं, पूरी ज़कात भी देते हैं, इसलिए हमें शरई रहनुमाई लेना जरूरी नहीं है। इस बारे में आप क्या फरमाते हैं? ये सवाल शोबा मनफूजात अमीर अहले सुन्नत ने कायम किया है, जबकि जवाब अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुल आलिया का ही है। जवाब, अगर मैं ये कहूं कि इस दौर में 99.9% बिजनेसमैन यानी ताजिर ऐसे हैं जिनको बिजनेस यानी तिजारत के मसाइल मालूम नहीं, तो शायद ये मुबालगा ना हो। सिर्फ बातें कर रहे होते हैं कि हम तो अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं, हमें ज्यादा लालच नहीं है, बच्चों के लिए रोजी रोटी कमाते हैं, हालांकि हराम घसीट घसीट कमा कमा कर अपने अकाउंट में भर रहे होते हैं और उन्हें इसका पता भी नहीं चलता। ये समझ रहे होते हैं कि मैंने कौन सी शराब की दुकान खोली है या मैं कौन सा सूद का काम कर रहा हूं, हालांकि बात बात पर झूठ बोल रहे होते और धोखा दे रहे होते हैं। इन चीजों को ये सीरियस यानी संजीदा ही नहीं लेते, समझते हैं कि कारोबार में ये सब चलता है, इन चीजों के बगैर कारोबार कैसे होगा, झूठ ना बोलो तो चीज बिकती ही नहीं है। नऊज़ु बिल्लाह, ये शैतान का बनाया हुआ जहन है। जब ये हाल होगा तो बरकत कैसे होगी, नमाजों में दिल कैसे लगेगा, खुशू खुजू कैसे आएगा, रिक्कत कैसे आएगी, गुनाहों से नफरत कैसे बढ़ेगी। जो कारोबारी हजरात मुझे सुन रहे हैं, वो दारुल इफ्ता अहले सुन्नत से अपने कारोबार की स्कैनिंग यानी तफ्तीश करवा लें, इसके लिए बाकायदा हाजिर होना पड़ेगा, या अगर हाजिर होना मुमकिन नहीं तो इंटरनेट वगैरह के जरिए ही राबता कर लें और अपने कारोबार की शरई रहनुमाई लें। इसके बगैर अपने बाल बच्चों को हलाल रोजी खिलाना बहुत मुश्किल है। मैंने बिल्कुल दो टोक और जनरल बात की है, किसी के कारोबार पे कोई हुक्म नहीं लगाया, सबको मसाइल सीखने चाहिए। मुलाजिम हैं तो मुलाजिमत के, और सेठ हैं तो मुलाजिम रखने और सेठ बनने के मसाइल सीखना फर्ज है। अगर ये कहेंगे कि यार हम इस चक्कर में नहीं पड़ते, तो क़यामत के दिन भी कह देना कि हम इस चक्कर में नहीं पड़ते, नाऊज़ु बिल्लाह, कहीं ऐसा ना हो कि जहन्नम में डाल दिया जाए। जब हम दुनिया में आए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, तो हमें अल्लाह व रसूल के अहकामात मानना ही पड़ेंगे, इसके बगैर छुटकारा नहीं है। जब तक कोशिश नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा, अल्लाह करीम हमको कोशिश करने वाला बनाए। सवाल, मुलाजमीन से मालिक रोजे की हालत में आम दिनों की तरह काम लेता हो, एहसास तक ना करता हो, तो ऐसी सूरत में मुलाजमीन को क्या करना चाहिए? जवाब, मालिक अपने मुलाजमीन को रोजे की हालत में रियायत नहीं देता और पूरा काम लेता है, तो मालिक को ऐसा करने के बजाय रोजेदार के साथ एहसान करना चाहिए। हदीस पाक में है, जो इस महीने यानी रमजान में अपने गुलाम पर तखफीफ करे यानी काम कम ले, अल्लाह पाक उसे बख्श देगा और जहन्नम से आजाद फरमा देगा। बहरहाल, काम की वजह से रोजा मुआफ हो जाए या कजा करना जायज हो, ऐसा नहीं हो सकता। अगर रोजे की हालत में काम नहीं हो सकता तो कोई और रोजी का सबब तलाश करें, मगर काम की वजह से एक रोजा भी तर्क नहीं कर सकते और ना कजा कर सकते हैं। सवाल, बाज वालिदैन बच्चों की स्कूल से छुट्टी हो जाने पर उन्हें मार पड़ने और नंबर कटने से बचाने के लिए झूठी एप्लीकेशन लिखकर भेज देते हैं और जान पहचान वालों से झूठे सर्टिफिकेट भी बनवा लेते हैं। इसी तरह दफातर में होता है कि अगर मुलाजिम को छुट्टी लेना हो तो वो बीमारी की झूठी एप्लीकेशन भेज देता है। क्या इस तरह झूठी दरखास्तें देने वालों को भी इस हदीस पाक के झूठे बीमार ना बनो कि वाकई बीमार हो जाओगे से इबरत हासिल करनी चाहिए? जवाब, जो वालिदैन और मुलाजिम इस तरह कर रहे हैं वो झूठ बोलकर गुनाहगार और अदाबे नार के हकदार बन रहे हैं। जो वालिदैन ये कह रहे हैं कि बच्चे बीमार थे, हालांकि वो जानते हैं कि बच्चे बीमार नहीं थे बल्कि मेहमान बनकर हलवा खाने गए थे। यूं ही बीमारी की झूठी दरखास्त देकर छुट्टी करने वाला मुलाजिम भी सैर वगैरह करने गया होगा। याद रखिए, बीमार होना बुरा नहीं है बल्कि बीमारी तो रहमत है, अलबत्ता झूठ बोलने में आखिरत का अदाब है। निजी गुनाह का मरज जिस्मानी मरज से ज्यादा तबाहकुन है, लिहाजा ऐसे वालिदैन और मुलाजमीन पर तौबा फर्ज है। जो मुलाजिम झूठ बोलकर छुट्टी कर रहा है उसकी तनख्वाह तो बीमारी में छुट्टी करने पर भी कटती होगी। इस मौके पर निगरानी शुरा ने फरमाया, प्राइवेट कंपनियों में मामला अलग होता है जबकि हमारे यहाँ वक्फ के मसाइल हैं। अल्लाह पाक हमारे मुफ्तियाने किराम को सलामत रखे। उनकी रहनुमाई में हमने एक इजारा फार्म बनाया हुआ है जिसमें ओटी, कटौती और लेट मिनट वगैरह का इंतजाम बना हुआ है। हमारे यहाँ अजीरों का ऐसा निजाम है कि अगर कोई बहुत बड़ी इंडस्ट्री और फैक्ट्री वाला भी उसे देखेगा तो वो कहेगा कि वाकई दावत इस्लामी के शोभा जात में अजीरों का एक मिसाली निजाम है, क्योंकि हमारे यहाँ जो भी अजीरों का निजाम है वो शरई कानून के मुताबिक है। यही वजह है कि हमारा ये निजाम बहुत सारे अजीरों और इदारों की बचत का जरिया है। अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुम आलिया ने फरमाया, बीमार होने से भी बचेगा और मामूली बीमारी में भी कटौती से बचने के लिए नौकरी पर आएगा। याद रखिए, शरई कवानीन पर अमल करने में बरकत है। सवाल, सनद और तजर्बा में से कौन सी चीज ज्यादा अहम है? नीज ये भी इरशाद फरमाइए कि जिसके पास तजर्बा और हुनर है लेकिन उसके पास तालीम नहीं, क्या उसे पढ़ा लिखा कहा जाएगा? जवाब, इसकी मुख्तलिफ सूरतें हैं। नंबर वन, किसी के पास इल्म और तजर्बा दोनों हों तो ऐसा शख्स ज्यादा कामयाब होता है। नंबर टू, किसी के पास सिर्फ इल्म हो, हुनर या तजर्बा ना हो तो ऐसा शख्स आम तौर पर तजर्बा ना होने की वजह से ज्यादा कामयाब नहीं हो पाता। कई जगहों पर तजर्बे की बुनियाद पर मुलाजमत दी जाती है, हत्ता कि सनद भी मांग ली जाती है, जिसके बाइस तालीम याफ्ता ना तजर्बेकार शख्स बेरोजगार रह जाता है जबकि कम पढ़ा लिखा तजर्बेकार शख्स बरसरे रोजगार हो जाता है। अलबत्ता कभी इसका उलट भी हो जाता है। बहरहाल, कभी सनद काम कर जाती है और कभी महारत। याद रखिए, सहाबे किराम रदी अल्लाह अन्हुम कसीर इल्म वाले थे मगर उनके पास मुरव्वजा सनद यानी आज की तरह का सर्टिफिकेट नहीं थी, लिहाजा इल्म होना चाहिए क्योंकि सनद तो नकली भी बन सकती है। मुमकिन है इसके जरिए इल्म ना होने के बावजूद नौकरी मिल जाए मगर तजरिबा नकली नहीं हो सकता। कितने ही तालीम याफ्ता बेरोजगारी की वजह से खुदकुशी कर लेते हैं लेकिन तजरबेकार बेरोजगार नहीं रहता। सवाल, क्या ऑफिस जाने के लिए रोजे में दाढ़ी मुंडवा सकता हूं? जवाब, दाढ़ी मुंडवाना और एक मुट्ठी से घटाना हराम और जहन्नम में ले जाने वाला काम है। रमजान मुबारक में रोजे की हालत में ये काम करना तो और ज्यादा बुरा है, अलबत्ता उसका फर्ज रोजा अदा हो जाएगा लेकिन गुनाह करने से रोजे की नूरानियत जाती रहती है। गुनाह की हलाकत खेजियां बहुत ज्यादा हैं اور خصوصاً رمضان مبارک اور روزے میں گناہ کرنے کے بارے میں فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس نے رمضان میں کوئی گناہ کیا تو اللہ پاک اس کے ایک سال کے اعمال برباد فرما دے گا۔ لہذا بندہ نہ رمضان مبارک میں گناہ کرے اور نہ رمضان مبارک کے علاوہ۔ یاد رکھیے، ایسی نوکری شرعاً جائز نہیں جس میں یہ شرط ہو کہ روز داڑھی منڈا کر آنا ہے یا داڑھی رکھنے کی اجازت نہیں ہے، لہذا ایسی نوکری کو چھوڑ کر دوسری نوکری اختیار کریں۔ یہ شرعی مسئلہ ہے جو میں نے بیان کیا ہے، آپ کسی عالم دین اور مفتی صاحب سے پوچھیں گے تو وہ بھی میری بات کی تائید کریں گے۔ سوال: میرے پاس ایک موٹر سائیکل ہے جس میں پیٹرول کمپنی ڈلواتی ہے، کیا اس موٹر سائیکل کو میں گھر کے کام کاج کے لیے استعمال کر سکتا ہوں؟ نیز کیا میرے بھائی یہ موٹر سائیکل چلا سکتے ہیں؟ جواب: جس کمپنی کی طرف سے آپ کو موٹر سائیکل دی گئی ہے، اگر وہ پرائیویٹ کمپنی ہے اور موٹر سائیکل کو گھریلو کام کاج کے لیے استعمال کی اجازت بھی ملی ہوئی ہے تو اسے استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر آپ کی سرکاری نوکری ہے یا کمپنی کی طرف سے گھریلو کام کاج کے لیے استعمال کرنے کی اجازت نہیں تو جتنا عرف ہو صرف اتنا ہی استعمال کر سکتے ہیں۔ مگر یہ بہت مشکل ہے کہ کوئی کمپنی یوں کہے کہ آپ کے بھائی اور دوست بھی یہ موٹر سائیکل استعمال کر سکتے ہیں، کمپنی کی موٹر سائیکل کو گھریلو کام کاج کے لیے استعمال کرنے میں کتنا عرف ہے، اس بارے میں مفتی صاحب رہنمائی فرمائیں گے۔ اس موقع پر مفتی صاحب نے فرمایا، بعض اوقات کمپنی کی طرف سے مکمل اجازت ہوتی ہے کہ جس کام میں چاہیں استعمال کریں، بالفرض موٹر سائیکل پر زیادہ کام ہوتا ہے تو بھی اسی کو پیٹرول بھروانا پڑے گا جتنا مہینے بھر میں استعمال کرے، اور چاہے کسی بھی مقصد میں استعمال کرے بعد میں کمپنی اسے اتنی رقم دے دے گی۔ بہرحال جیسے قوانین ہوں گے اسی کے مطابق عمل کرنا ہوگا۔ سوال: ایک آدمی سرکاری پوسٹ پر ہے اور لوگوں سے اس کی ذاتی نوعیت کے تعلقات بن جاتے ہیں اور یہ لوگ تحائف لے آتے ہیں، تو کیا اس صورت میں تحائف قبول کرنا رشوت کے زمرے یعنی حکم میں آئے گا؟ جواب: پہلے سے تعلقات اور تحائف کا لین دین تھا اور بعد میں اس کی گورنمنٹ جاب یعنی ملازمت لگ گئی اور اس سے کام نکلوایا جا سکتا ہے، یعنی قہر و تسلط اسے کسی طرح کا حاصل ہے، تو اب بھی پہلے کی طرح نارمل لین دین ہے تو یہ چلے گا۔ البتہ اگر اس کے ذریعے سے اپنا کوئی کام نکلوانا ہے تو اب پرانے طریقے کے مطابق بھی ہونے والے تحائف کا لین دین رشوت میں چلا جائے گا۔ اسی طرح اگر عہدے کی وجہ سے لین دین کا سلسلہ بڑھ گیا، دی جانے والی چیز کی قیمت بڑھ گئی، سائز بڑھ گیا اور مقدار بڑھ گئی، تو یہ زائد حصہ رشوت ہے۔ ہاں اگر یہ شخص مالدار ہو گیا اس لیے آئٹم بڑھا دیے اور ڈشیں بڑھا دیں تو اس کا حکم الگ ہے، یعنی قبول کرنے میں حرج نہیں۔ یوں ہی اب اس کی خصوصی دعوت کرنا کہ اگر یہ نہ آتا تو دعوت ہی نہ ہوتی، تو اگرچہ اس کی وجہ سے دو چار اور کو بھی دعوت دے دی تب بھی یہ خصوصی دعوت رشوت میں داخل ہے۔ البتہ مطلقاً جو دعوت ہوتی ہے وہ رشوت نہیں ہوتی، جیسے ماتحت کی طرف سے شادی کی دعوت آئی اور آپ اس میں چلے گئے، اس میں بھی اگر عام مہمانوں کو سادہ ڈشیں دی گئی اور افسر نگران یا بڑے عہدیداران کو اسپیشل ڈشیں پیش کی گئیں تو یہ اسپیشل ڈشیں رشوت میں شمار ہوں گی۔ ہاں جو سب کو کھلایا جا رہا ہے اگر وہی افسر یا نگران کو بھی کھلایا جا رہا ہے تو رشوت نہیں۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، جس کو ملازم رکھنا ہے اسے ملازم رکھنے کے، اور جس کو ملازمت کرنی ہے اسے ملازمت کے ضروری احکام جاننا فرض ہے۔ اگر حسب حال نہیں سیکھے گا تو گناہگار اور عذاب نار کا حقدار ہوگا، اور نہ جاننے کی وجہ سے بار بار گناہوں میں مبتلا ہونا مزید برا، یعنی اس کے علاوہ۔ اس حوالے سے مزید معلومات کے لیے امیر اہل سنت کے رسالے حلال طریقے سے کمانے کے 50 مدنی پھول اور بہر شریعت جلد 3 صفحہ 104 تا 184 اجارہ کا بیان پڑھ لیجئے۔